and phonetics of English language. And I've also guided research leading to the degree of MPhil of quite a few universities of Haryana as well as outside. After my retirement from government service, though I have been with the Brahma Kumaris for quite some time, but after my retirement 7 years ago, I devoted myself to godly service, not taking any worldly job, any academy or any institution or any private coaching or anything, nothing. Even at my place at Hisar, I've been regularly going to the central jail Hisar for the last about 4.5 years. We have a Gita Pathshala there also in that jail. And we have a Gita Pathshala in the Bostal jail where we have sisters and mothers. So there also I've been going once a week for the last about 2 years. Apart from that, I regularly conduct my classes, Baba classes, in the morning at one center and in the evening at another center. So almost 3 to 4 classes I'm having daily. Apart from that, I edit our English magazine, The World Renewal. I have also edited for reprint some of the books of the Brahma Kumaris written by Brahma Kumar Jagdish Bhai, some of them being Spiritual Solutions to the World Problems. The last I did a few days back was The Peace of Mind. And recently I have translated our book Adi Ratan, which was published last time in Hindi last year. Quite a bulky book, about 300 to 400 pages. I've translated that book into English, and that may be printed in a few months right from now. So far as this PCP and this teaching is concerned, I came to education wing of my own since I like teaching. It has been, you can say, my second nature. I've also been writing in the newspapers, particularly Indian Express and Hindustan Times and Times of India in English. For some time I wrote for the Hindu also, from when I was at Bangalore for some time. So till now I have published about rather more than 1,500 letters in these newspapers and about 50 articles on different subjects, political subjects and socio-political subjects. So that being my exhaustive introduction. Right. I hope I am quite intelligible when I'm speaking in English, or is there any difficulty? Though I'll be speaking in Hindi, I don't mind. Hindi is my mother tongue and I can speak Hindi also as fluently as I think I do English. Yeah. Yeah, okay. Mixed will do? Okay. Pardon? Yeah, no problem. With me, it should not be a problem. If you like, I can speak in Punjabi as well. I don't mind. I know. In fact, that is Urdu, Punjabi, English and Hindi. These are my languages. So, I can converse. Okay. So, coming to your first unit, that is course 1, unit 1, aapka pehla course, pehla paper, और उसका पहला चैप्टर जो दैट इज रिलेट्स टू डेफिनेशन कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज डेफिनेशन कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज एम आई राइट या एक छोटी सी सजेशन दू मैं आपको शिक्षा के प्रति मेरा व्यू ये है खासतौर पर क्लासरूम के लिए अरविंद भाई वो चाहिए हमें पोडियम तो शिक्षा के प्रति मेरा व्यू ये है कि पुस्तकें किताबें तो आपके पास घर में रहती ही हैं ठीक है ना वैसे मुझे इतराज नहीं है आप किताब खोल के बैठे मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा ये लगता है कि अगर आपका ध्यान किताब की तरफ होगा कि सर कहां पहुंचे और मैं कहां रह गया या रह गई तो वो फिर वो रेस लगती रहेगी कभी आप आगे होंगे कभी मैं आगे होऊंगा तो उस दौड़ दौड़ में कॉन्टेक्स्ट खत्म हो जाएगा है ना सो इसीलिए देखें घर असली अच्छा मजा तो इस बात का है लेक्चरिंग का और पीसीपी के लिए जब आप आए हैं विच इज पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम जिसके लिए आप आए हैं उसका मतलब ये है कि हमारा आपस में कॉन्टेक्ट हो मैं बोलूं आप सुने आप बोले मैं सुनूं ये ना हो कि मैं बोलूं आप पुस्तक में देखें और आप जब बोलने लगे तो मेरा ध्यान कहीं और हो तो उसमें वो कॉन्टेक्ट नहीं हो पाएगा बाकी आपकी इच्छा है जैसे आपको अच्छा लगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह से आई एम हैप्पी ऑल द वे नहीं 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 डोंट से दिस कभी मत कहिए इस बात को कि टीचर ने जो कहा वो अच्छा है मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता रहा हूं कि टीचर को बेशक मेरा नाम वेद है लेकिन टीचर की बात कही को कभी वेद वाक्य मत मानिए गॉस्पल ट्रूथ नहीं है वो क्योंकि या दैट इज ओके क्योंकि मैं भी तो ह्यूमन बीइंग हूं मैं इनफॉलिबल तो नहीं हूं और विश्वास कीजिए अगर आप मेरे से प्रश्न पूछेंगे तो ये यकीन मत रखिए कि मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगा नो मैं भी आपकी तरह से ही हूं मेरे में कहीं कमी भी हो सकती है हो सकता है मुझे कुछ ना भी पता हो कहीं क्लैरिटी ना भी हो तो इसीलिए थोड़ी देर पहले एक भाई साहब ने कहा कि हम पढ़ रहे हैं तो मैंने कहा मैं तो अभी पढ़ ही रहा हूं मैं तो अभी कभी स्टूडेंटशिप से बाहर निकला ही नहीं हूं क्या पता कब छोटा सा 2 साल का बच्चा भी आपको कुछ पढ़ा जाए और वह सारी जिंदगी काम आता रहे यही बात तो वैल्यूज की है और क्या है वैल्यूज और हैं क्या वैल्यूज और क्या हैं अगर आप इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि मेरे सामने बैठा हुआ मुझे सुनने वाला मुझे कुछ सिखा सकता है अगर आप इस बात के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर ना तो आप अच्छे स्पीकर हैं ना ओरेटर हैं ना टीचर हैं और शायद ना ही अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं जरूरी है ना तो लेट्स कीप अवर आईज एंड ईयर्स ओपन एंड द विंडोज ऑफ ब्रेन ऑल्सो ओपन क्लोज माइंडेड अप्रोच नहीं हो कभी कई बार हम लोग किसी पर्टिकुलर फेथ से आते हैं यहां तो चलो सब ब्रह्मा कुमारीज के हैं और मैं अपनी स्पीचेस में अक्सर कई बार बात करता हूं तो मैं कहता हूं भूल जाओ कि आप ब्रह्मा कुमारी से हैं बाहर आए ना थोड़ा सा बाहर निकले ना आप जिस विश्वास को मानते हैं उसको पकड़कर मत बैठे रहे शायद आपके साथ बात करने वाला जो किसी और विश्वास का होगा शायद कुछ अच्छी बात बता जाए और आपको अपने विश्वास को छोड़े बिना शायद कुछ अच्छा मिल जाए क्या हर्च है उसको लेने में सो इसीलिए सिखाने वाला न पुरुष है न स्त्री है न बच्चा है न बूढ़ा है वो एक टीचर है वो टीचर क्या है वो उसकी इमेज मुझे तो नजर आई नहीं अभी तक आप देखें आपको आती हो तो सो इसीलिए किसी व्यक्ति के रूप में टीचर को मत देखिए जैसे बाबा कहता है भगवान को किसी व्यक्ति के रूप में मत देखें आप वो व्यक्ति नहीं है निराकार है ना तो टीचर, बाबा भी तो टीचर है ना हमारा, तो उसको हम साकार रूप में क्यों देखेंगे, उसको टीचर तो फिर टीचर है। सो चलिए बात करते हैं परिभाषा, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन। इधर रख दें, इधर रख दें, हाँ इधर रख दें, जिधर ठीक लगे, नीचे ही रखें, नीचे ही रखें तो ज्यादा, हाँ ऐसे रखें, घुमा दें। थैंक यू भाई, आपको बहुत तकलीफ हुई, ऑड लगा, लेकिन बस वो भाई भूल गए, तो मैंने सुबह बोला था उनको, बस ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। अगर आप इसको सेट कर सकते हैं उधर तो, हेलो अरविंद भाई, इसको सेट कर सकते हैं इधर, चलो वो आ जाएगा, कोई बात नहीं, उसको भेज दें आप, थैंक यू। तो प्रश्न ये होता है, वैल्यूज, मूल्य जिनको हम कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर बहन जी इधर मैं नजर नहीं भी आ रहा, मेरी आवाज आ रही है, कोई बात नहीं, दो मिनट बाद वो आ जाएगा, तो मैं मीरा बाइक के बोल तो सकता हूं खड़ा होकर, लेकिन पीछे भाई बोलेंगे कि सुनाई नहीं देता है, शुड आई ट्राई। तो देखिए वैल्यूज क्या है, मूल्य क्या है, अक्सर हम कमेंट तो बड़े आसानी से कर देते हैं, और कई बार इतनी आदत हो जाती है, घर वाले तंग आ जाते हैं कि आपकी ये क्लास थोड़ी है, घर है ना, आप जरा कल्पना करके देखिए ना कि आपके आप में से कोई टीचर है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, थैंक यू, इज ओके, अब तो आ रही है आवाज, हाँ थोड़ा और लाउडर, हाँ नहीं नहीं नहीं, मेरे मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक इट्स सुटेबल, नहीं मैं और नीचे हो सकता हूं, फिर आपको दिक्कत होगी अगर मैं यूं हो गया नीचे तो, फिर आपको दिक्कत होगी, इसीलिए इज ओके, वो आ जाएगा तो माइक ऊंचा करवा लेंगे, बाकी ठीक है, ऊंचा नहीं करी आवाज। तो देखिए, नहीं बहुत ऊंची होगी तो ये चीखने लगेगा थोड़ी देर बाद, चलो कोई बात नहीं, नहीं बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, लेट्स नाउ कम टू द टॉपिक। प्रश्न ये होता है कि वैल्यूज किसको कहा जाए, किसको आप वैल्यूज मानेंगे, किसी को भी उठा के पूछ लें वैल्यूज तो जवाब अलग अलग मिलेंगे, किसी के जीवन की एस्पिरेशंस उसकी वैल्यूज हैं, किसी के जीवन में एक ग्रेसफुल सभ्य व्यवहार जो, भाई जी आप करेंगे थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा इस, आप क्या करेंगे, अभी नहीं, मुझे नहीं चाहिए प्रोजेक्टर, आप ये घंटा, नहीं नहीं ये घंटा आप आराम कर लें, इसके बाद चाहिए होगा, इसको थोड़ा ऊंचा कर दें, इसको थोड़ा सा ऊंचा कर दें, मुझे प्रोजेक्टर नहीं चाहिए, हाँ वो सेटिंग कर ले बेशक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट क्लास के लिए, हाँ थैंक यू, संजय भी आ गया, थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते। या तो हम ये कह रहे थे कि वैल्यूज को डिफाइन करें ना, प्रयास करें, क्या परिभाषा देंगे वैल्यूज की, हम घर के अंदर बच्चों को आसपास सबको बड़े आराम से कह देते हैं, यही सीखा है तुमने जिंदगी में, बच्चों को कह देते हैं ऐसे हमारा नाम रोशन करोगे, हम कह देते हैं कि कोई कहेगा क्या कहोगे कि तुम मेरे बच्चे हो, हाँ यानी हम ये सारी बातें क्या कर रहे हैं, वैल्यूज की कर रहे हैं, लेकिन क्या हम डिफाइन कर सकते हैं, वो बच्चा हमारे से कभी पूछे कि जी आप मेरे को बता तो दो फिर मैं क्या करूं, आपने ये तो कह दिया बच्चे ये मत करो, बच्चे ये नहीं करना, बच्चे वो नहीं करना, इससे मेरा नाम बदनाम होगा, इससे परिवार का नाम बदनाम, लेकिन मैं करूं क्या, आप मुझे नटशेल में बता देना, एक डेफिनेशन दे देना, ऐसा कर्म करें जिसको हम वैल्यूज कह सके, तो ऐसी परिभाषाएं बड़ी मुश्किल हो जाती हैं जब आप एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चीजों को परिभाषित करने लगते हैं तो अभी तो नहीं, घर में कमरे पे जाकर हैप्पीनेस को, खुशी को डिफाइन करने का प्रयास करिए, कोशिश करिए। खुशी किसे कहेंगे आप? बात फिर वही आ जाएगी वैल्यूज पर। मेरी खुशी, इनकी खुशी, उनकी खुशी, सबकी खुशी अलग है। शायद कोई मेरी खुशी को खुशी मानने के लिए तैयार नहीं होगा, शायद मैं आपकी खुशी को खुशी मानने के लिए तैयार नहीं हूं। कारण कि मुझे लगता है नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ी होता है। मींस इट इज नॉट ग्रेसफुल, इट डज नॉट लैंड ब्यूटी टू लाइफ, इट डजंट हेल्प इन द एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, इट्स नॉट एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अवर सिविलाइजेशन। हमें लगता है कि वैल्यूज तो वो हो ना जो सभ्यता का एक अभिन्न भाग हो, वो वैल्यूज हैं, जो जीवन के अंदर एक सुंदरता लाए, जीवन को जीवन कहलाने के लायक बनाए, वो हो ना। लेकिन उसके बावजूद भी फिर आ जाता है कि वैल्यूज की ये परिभाषा क्या सब पर लागू होती है? आप कोई भी परिभाषा बना लें, वहां फिर मॉरल कंफ्यूजन्स खड़े हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा है कि बच्चे झूठ नहीं बोलना, और बच्चा थोड़ा किसी वक्त कह दे पापा कल आप झूठ बोल रहे थे ना, जवाब क्या होता है? नहीं बेटा वो मजबूरी थी ना, अगर मैं झूठ ना बोल, या क्या प्रॉब्लम है ये? अब आपको लगता है बच्चा भी गलत नहीं है, ये नहीं कि आप बच्चे से नाराज हो रहे हैं, नहीं नाराज नहीं हो रहे आप बच्चे से, उसको डिस्करेज भी नहीं कर रहे कि अगर आप झूठ बोलें और वो आपके ऊपर उंगली उठाए, आप डिस्करेज नहीं कर रहे। अक्सर हम घरों में करते हैं, अक्सर कह देते हैं मम्मी के सामने बोलते हो, शर्म नहीं आती, ये कौन सी वैल्यू है? हम कह देते हैं पापा के सामने, बड़ों के सामने जुबान लगाते हो, यानी क्यों? हमने उसको दबाया क्योंकि हमारा एक्सपोजर होता है और हम बच्चे के सामने एक्सपोज होना नहीं चाहते। हमने एक आवरण पहन रखा है ना, एक नकाब जिसको कहेंगे हम, हमने वो पहन रखा है और बच्चा उसको उठा के या उसके अंदर झांक के देखने की कोशिश कर रहा है, हमें बुरा लगता है। लेकिन प्रश्न यहां ये है कि बच्चा गलत नहीं है और आप समझते हो गलत मैं भी नहीं हूं, फिर क्या करें? मॉरल कंफ्यूजन। वो मेरा दोस्त है, बहुत गहरा दोस्त है, लेकिन उसने एक कानून तोड़ा है, अब मैं क्या करूं? सच बोलूं, झूठ बोलूं, चुप रहूं, क्या करूं? और अक्सर हम क्या कहते हैं, मुझे क्या लेना है ना, चुप रहो ना। अगर मैं सच बता दूं तो उसकी बेइज्जती होगी या दंड मिलेगा, ना बताऊं तो मैं चुप रह रहा हूं, छुपा रहा हूं, मेरी वैल्यूज कहां है, मेरा एथिकल बिहेवियर कहां है, नैतिकता कहां है मेरी? लेकिन क्या अपने एक दोस्त को बचाना गलत है? क्या अपने एक दोस्त की सहायता करना गलत है? क्या अब ये भी तो एक वैल्यू है? कई बार हम कह देते हैं कि कोई मर रहा है उसको झूठ बोल दो और वो बच जाता है तो क्या बुरा है? अगर झूठ बोलने से एक जिंदगी बच जाती है तो आपको सच बोलना जरूरी है क्या? अब आप डिसाइड करें ये वैल्यू है या नहीं है, या वैल्यू की वायलेशन है क्या है? यानी प्रश्न ऐसे उठते हैं बहुत बार, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब हम बच्चों को कहते कुछ हैं लेकिन हमारे एक्शंस क्या होते हैं, contrary to the norms, जो हमने नियम बना रखे हैं उन नियमों के विरुद्ध होते हैं. बच्चे सिगरेट नहीं पीना, बहुत बुरी चीज है. सिगरेट में निकोटिन होती है, ये पॉइजन होता है, वो पॉइजन होता है, इससे आदमी मरता है, कैंसर होता है, ये होता है. बिल्कुल ठीक बात है. और बच्चा कहे पापा आप क्यों पीते हो, तो पेरेंट्स क्या कहेंगे? डू एज आई से, नॉट एज व्हाट आई डू. मैं जो कहता हूं वो करो, ये नहीं कि जो मैं कर रहा हूं मेरी नकल करो. फिर कई बार पेरेंट्स ही या बड़े भाई या जो भी हैं वो भी जो है समझाने के लिए कहने लगते हैं, मैं जानता हूं धूम्रपान करना बुरा है, मैं जानता हूं, लेकिन क्या करूं मेरी आदत नहीं छूटती, इसीलिए तो तुम्हें सिखा रहा हूं. अब बताइए, अब इसके बाद बच्चा भी क्या कहेगा उसका? वो कह रहा है मैं गलत हूं, मैं जानता हूं गलत है, लेकिन नहीं छोड़ पाता. अब उसका बिहेवियर क्या है? बेस्ड ऑन वैल्यूज है या नहीं है, सोचें आप. कह रहा है, कहता जी मैं हेल्पलेस हूं ना, आप मेरे को कहते हैं रेस लगाओ, मेरी टांग टूटी हुई हो, मैं क्या करूं? मैं चाहता हूं रेस लगाना, मैं दौड़ना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, आई एम हेल्पलेस. मैं पीता हूं, नहीं रह सकता, कोई भी व्यसन हो फॉर दैट मैटर. तो देखने की बात यह है कि हम नॉर्म्स तो बना लेते हैं लेकिन हमारे एक्शंस बहुत बार उसके विरुद्ध होते हैं. कई बार हम ये कहते हैं रियलिटी ऐसी है ना लाइफ की, लाइफ की रियलिटी, जीवन का सत्य ऐसा है ना. जीवन लॉजिकल तो नहीं है ना, जीवन तर्कपूर्ण तो नहीं है ना, जीवन की हर घटना हर परिस्थिति तर्क के मुताबिक तो नहीं चलती है ना. हम ऐसी ऐसी बातें कहते हैं अपने आप को. लेकिन अब मैं आ रहा हूं वापस वैल्यूज की वास्तविकता पर. लेकिन जो ट्रू वैल्यूज हैं शुड नेवर बी बेस्ड ऑन मटीरियल परसेप्शंस. यानी जो हमने भौतिकता देखी, जो जीवन की परिस्थिति देखी, उस परिस्थिति के मुताबिक अगर हमने अपनी वैल्यूज को बदल लिया, ढाल लिया, तो ये वैल्यू नहीं है. वैल्यू एक आदर्श जीवन की कल्पना है जिसे जीवन के अंदर, अपने वास्तविक जीवन के अंदर ढालने का प्रयास किया जाना चाहिए. वैल्यू का अर्थ ये नहीं है कि जिस तरह की परिस्थिति हो, जिस तरह के हालात हो, मैं उस तरह की अपनी वैल्यू बना लूं. अक्सर हम कह देते हैं कि 60 लोग बैठे हैं, जो 59 झूठ बोलते और मैंने भी बोल दिया तो क्या गलत है. कई बार हम कह देते हैं कि उन 60 के अंदर मैं अकेला आइसोलेट नहीं होना चाहता. और इससे भी ज्यादा स्ट्रांग बात हम कई बार कहते हैं, मैं अपने समाज में अलग नहीं होना चाहता, कहते हैं ना अक्सर. तो प्रश्न यही आता है, अगर सारा समाज गलत चल रहा है तो आप भी गलत चले जाओ, फिर आपने वैल्यूज पढ़ी क्यों? बाकियों ने भी तो नहीं पढ़ी थी, आप क्यों पढ़ने आए थे? समाज में, आपके क्लास में, या आपके जिस एरिया में, जहां शहर में, जिस गली मोहल्ले में रहते हैं, वहां सारे तो नहीं पढ़ने आए ना यहां पर, फिर आप क्यों पढ़ रहे हो? और जब आप पढ़ रहे हो तो फिर आप अपने आप को उनके साथ जो है क्यों चलना चाहते हो? यानी हमें प्रयास ये नहीं करना कि मैं परिस्थिति के मुताबिक अपने को कैसे ढाल रहा हूं. नो, वैल्यू क्या कहती है, उस वैल्यू को तोड़े बिना मैं परिस्थिति के अंदर कैसे चल सकता हूं, वो इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी है. इसीलिए यानी ट्रू वैल्यूज जितनी भी होंगी वो हमेशा इसी बेस पर आधारित होंगी। बाकी जहां तक समाज की बात है, अर्लियर, अब तो डेमोक्रेसी है, पहले हमारे ऊपर वैल्यूज थोपी जाती थी। एक्सटर्नल पावर्स जो थी वो हमें कहती थी ये करना होगा। आज भी बहुत परिवारों में बहनों माताओं के साथ तो वही होता है, एक्सटर्नल पावर करना पड़ेगा। बेटी को हम कह सकते हैं बस और नहीं पढ़ना, कॉलेज गंदे होते हैं, कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती, कॉलेज में कोई वैल्यूज नहीं है, चरित्र खराब हो जाता है, घर बैठ जाओ, और फिर कि तुम्हारी इच्छा का कोई मतलब नहीं है, मां बाप ने डिसाइड कर दिया ना शादी करनी है, फलां जगह करनी है, यस चुपचाप हो गई। तो ये एक्सटर्नल पावर है, और पहले एक्सटर्नल पावर होती थी ना किंग। अब गलत क्या है ठीक क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, बादशाह ने जो हुक्म दे दिया वो मानना पड़ेगा, दैट बिकम्स द वैल्यू ऑफ दैट टाइम। भारत ने तो बहुत सारे राजा लोग बहुत सारे ऐसे देखे हैं ना, मुस्लिम युग भी देखा है, मुगल भी देखे हैं, हाँ और भी देखे हैं, इंग्लिश भी देखे हैं, तो उन्होंने जो ऑर्डर दिए, जो लॉ बनाए उसको फॉलो किया हमने। इससे भी बड़ा ऑर्डर होता है प्रीस्ट का, आपका तो नहीं कहता मैं, समाज में कितने लोग ऐसे हैं जो घर का रेगुलर पुजारी पंडित जो भी वट एवर इज, जो आपके घर में आपकी माताजी को आके बोल जाए और उसको जो है अवहेलना आप कर पाएंगे। पंडित ने कह दिया कि माताजी सोमवार को आपने ये चीज नहीं बनानी, तो चाहे वो कैसे भी हो माताजी उस चीज को नहीं बनाएंगे, कुछ भी हो। माताजी मंगलवार का व्रत रखना बहुत जरूरी है अगर परिवार की शांति और सुख चाहते हो तो आपको कैसा भी हो कहीं से भी आए मंगलवार घर का किचन बंद मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पंडित जी ने कहा है ना, पंडित ने कहा है। ये भी एक्सटर्नल पावर है, आप में से खुद ही बता सकते हैं, कई बार पंडित ने कहा होगा बहन जी भाई साहब आप इतने व्रत रख लीजिए, वो कौन से होते हैं कि कोई 15-16 कुछ ऐसे किसी पर्टिकुलर दिन के, शुक्रवार सोमवार क्या होता है पता नहीं, हाँ देखिए बहुतों को पता है ना बहुतों को पता है सोमवार होते हैं 16 और शुक्रवार कितने होते हैं 5, शुक्रवार 5 होते हैं, जल्दी में छुटकारा हो जाता है। और हफ्ते का कोई दिन ऐसा होता है जब व्रत ना होता हो? नहीं, बुधवार भी होता होगा, बस मैं यही कहलवाना चाहता था, मैं यही कहलवाना चाहता था कि देखिए, यानी पंडित ने बोल दिया कि आपके ऊपर इतना ग्रह भारी है, आपको दिक्कत आ रही है, आपके अंदर मुसीबतें आ रही हैं, आपकी नौकरी ठीक नहीं चल रही है, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे हैं, घर में आमदनी ठीक नहीं, ये कितनी बातें हैं जहां पंडित जी को मौका मिलता है और वो कभी भी आके कह जाते हैं कि बहन जी सोमवार रखो, मंगल रखो, बुध रखो, शनि रखो, इतवार रखो, जो भी रखो, और माता जी रखती हैं, और कई बार जो है वो परसुएड कर लेती हैं पति को भी कि देखो आप भी रखो ना साथ में परिवार की कुशलता के लिए, और फिर मेरे जैसे जो होते हैं मान भी लेते हैं कि चलो जी हम रख लेते हैं, हो जाता है। वैसे बिलीव मी मैंने कभी व्रत नहीं रखा, और व्रत अगर रखता हूं तो एक व्रत रखता हूं साल में, और वो हम दोनों इकट्ठे रखते हैं, समझ गए आप? नहीं, हाँ यस, तो हम यानी डेमोक्रेसी पूरी तरह से, अगर करवा चौथ रखना है तो दोनों रखेंगे, नहीं तो कोई नहीं रखेगा, फिनिश, दैट इज। हाँ देखिए एक भाई पूछ रहे वो होता क्या है बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है, नहीं पता भी नहीं होना चाहिए। सो देखिए कहने का भाव ये है कि ये एक्सटर्नल पावर्स अपनी वैल्यू सिस्टम हमारे पर डालते रहे और हमारा जीवन जो है उस वैल्यू सिस्टम को मानता रहा और उसी को हमने अपनी वैल्यू मान लिया। फिर टीचर जो है ये भी एक्सटर्नल फोर्स है जो हमारे ऊपर जो है एक वैल्यू सिस्टम डालता है। बेशक ये अक्सर ठीक होता है लेकिन इसको भी हम अंधाधुंध मानने लगते हैं बहुत बार कि टीचर को मानना है टीचर। और बहुत बार आप देखें घरों के अंदर जो है छोटा सा बच्चा आपका 3-4 साल का 5 साल का स्कूल में जाता है, वो कॉपी घर लेके आता है, आप देखते हैं उसको गलत, बेटा ये ठीक नहीं, नो नहीं नहीं आपको पता नहीं है, मेरी मैम ने कहा है। मेरे अपने साथ हुआ, मेरी बेटी बहुत साल पहले जब बहुत छोटी थी तो मैंने उसकी इंग्लिश की एक जो है मैडम से रह गई गलती, मैंने उसको ठीक कर दिया, वो रोने लग गई, पापा ने मेरी कॉपी खराब कर दी। मैंने कहा बेटा ठीक कर दिया मैंने, आपको नहीं पता मेरी मैम ने कहा। मैं कहा बेटा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आपको नहीं पता, आपको नहीं आता, मेरी मैम ने कहा। तो टीचर कितनी एक्सटर्नल फोर्स है। आज भी हमें याद हैं अपने बचपन के टीचर्स, अब सबको याद होगा, और टीचर क्या सिखाता रहा, क्या वैल्यूज देता रहा, आपने उनको अपने पास आज भी रखा हुआ है, आज भी हम उन टीचर्स को याद करते हैं। लेकिन जो कुछ वो देते हैं क्या उसको हम अपना वैल्यू सिस्टम तो नहीं मान सकते ना। फिर जब ये एक्सटर्नल फोर्सेस को भी हम वैल्यू सिस्टम नहीं मानने को तैयार जो पहले थी, तो फिर आज क्या करें हम? आज हम कहते हैं हमारी कॉन्शियंस, हमारी अंतरात्मा, वो हमारा गाइड है। जहां तक वैल्यूज की बात है, हम बहुत बार बात करते वक्त कहते हैं ना आपस में, कोई गलत काम हो गया कि तेरी आत्मा नहीं बताती तेरे को, तेरे को अंदर से आवाज भी नहीं आती क्या? यानी अंदर का मन वो रह नहीं सकता। आप कितनी देर गलत काम करोगे वो आपको कुरेदेगा, आपको जगाने का प्रयास करेगा, और आप नहीं जागे तो अल्टीमेटली वो फट उठेगा। मैं कभी कभी तुकबंदी करता हूं हिंदी उर्दू की। इसी 5 सितंबर को यहीं मधुबन में डायमंड हॉल में एक फंक्शन चल रहा था, स्टेज पर टीचर्स को मैंने एड्रेस किया, 5-6 हजार टीचर्स आए हुए थे। तो वहीं बैठे कुछ दिमाग में आया, 2-4 लाइनें लिखी और मैंने फिर टीचर्स को कहा, वही रिपीट करता हूं आपके सामने, अंतर्मन की बात है। जमाना जो मुझसे मेरा मकसद पूछे, आई होप यू अंडरस्टैंड, जमाना जो मुझसे मेरा मकसद पूछे किस पुस्तक का कौन सा पेज दिखाऊंगा। टीचर के तौर पर, वो टीचर्स थे ना सारे, तो टीचर की तो हैबिट होती है ना कि ये क्वेश्चन आए तो ये आंसर दे देना, बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर इस चैप्टर में मिलेगा वगैरह वगैरह। तो टीचर को ही मैंने कहा, जमाना जो मुझसे मेरा मकसद पूछे किस पुस्तक का कौन सा पेज दिखाऊंगा, किस आईने में खड़ा हो के सराहूंगा खुद को, खुशी का कौन सा किस्सा घर जाके सुनाऊंगा, किस आईने में खड़ा हो के सराहूंगा खुद को, खुशी का कौन सा किस्सा। बच्चे घर जाते हैं ना तो मां को बता, आज ये किया आज वो किया, तो जब हम जाएंगे घर में तो क्या सुनाएंगे उसको, खुशी का कौन सा किस्सा घर जाके सुनाऊंगा, लोगों की जुबान तो बंद हो जाएगी आज या कल, लोगों की आलोचना क्रिटिसिज्म, लोगों की जुबान तो बंद हो जाएगी आज या कल, क्या अपनी जुबान को भी दबा पाऊंगा, अंतरात्मा को, क्या अपनी जुबान को भी दबा पाऊंगा, अंतर फटकर कहीं सैलाब न बन जाए, अंतर फटकर सैलाब न बन जाए कहीं, जो खुद कही बात पे खुद न चल पाऊंगा, जो खुद कही बात पे खुद न चल पाऊंगा। कॉन्शियंस हमारा जो है वो एक बहुत बड़ा यार्ड स्टिक है, एक जज है, वैल्यू डिटरमाइनर है, हमारे वैल्यूज को निर्धारित करता है कि हम सच में किन वैल्यूज पर चल रहे हैं। हम बच्चों को, मां बाप को, भाई बहनों को, पति पत्नी को, कितनों को भी हम धोखा दे लें, लेकिन अपने अंतर मन को धोखा नहीं दे सकते हम। तो इसीलिए ये जरूरी है कि अपने अंतर मन को हम जीवित रखें। सभ्यता का जो विकास करने में काम आए उन गुणों को धारण करें, चाहे वो हमारी एस्पिरेशंस हो, लेकिन उनको ग्रेस ऑफ लाइफ के तौर पर देखें, ये वैल्यूज हो सकती हैं। प्रश्न होता है कि अगर आज वैल्यूज हमारे जीवन के अंदर नहीं हैं, समाज में भी हमें वैल्यूज का जो है वो ह्रास नजर आ रहा है, गिरती हुई नजर आती हैं, तो हाउ टू री एस्टैब्लिश दोज वैल्यूज, उन वैल्यूज को हम किस तरह से दोबारा स्थापित करें समाज में, अपने जीवन में, परिवार में, हर जगह उन वैल्यूज को कैसे वापस लाए हम। तो क्विकली दो चार बातें कहूंगा मैं। सबसे पहली बात तो जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि हम अपने सेंस ऑफ आइडेंटिटी, मैं कौन, अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी को मैटर से हटाकर स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाए। जब तक मैं अपने आप को एक मटीरियलिस्ट, एक फिजिकल, एक बायोलॉजिकल इंसान के रूप में देखता हूं, तब तक मेरा वैल्यू सिस्टम डेवलप नहीं होता है। मैं एक टीचर हूं, मैं एक दुकानदार हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक पति हूं, मैं एक बेटा हूं, जब तक मैं इसी लेवल पर चल रहा हूं तो मैं अपने वैल्यू सिस्टम को अच्छे से डेवलप नहीं कर सकता। मैं एक बिजनेसमैन के तौर पर अपने वैल्यू सिस्टम को बना सकता हूं, मैं एक टीचर के तौर पर, एक पति के तौर पर, एक बेटे के तौर पर अपना वैल्यू सिस्टम बना सकता हूं, लेकिन एक इंसान के तौर पर मेरा वैल्यू सिस्टम क्या है वो नहीं बनेगा। इसीलिए मुझे उठना है मैटर से स्पिरिचुअलिटी की तरफ। अगर मैं मैटर से हटकर स्पिरिचुअल लेवल पर अपने आप को देखूं, या दूसरे शब्दों में यूं कहूं कि इफ आई कैन कनेक्ट माई सेल्फ विद माई ओन स्पिरिचुअल बीइंग, मैं अपने आध्यात्मिक अस्तित्व के साथ अगर स्वयं को जोड़ पाता हूं, तो तब मैं अपने वैल्यू सिस्टम को डेवलप कर रहा हूं। तो उसके साथ कई बार हम कह देते हैं कि मटीरियलिज्म से उठकर स्पिरिचुअलिटी पर आ गए, इसको कैसे प्रैक्टिकली कैसे कहेंगे। तो इसके लिए आवश्यक है कि जैसे मैं कहूं कि कनेक्ट योर सेल्फ विद मोरलिटी, विद ट्रूथ, विद द सुप्रीम सोल, फिर देखिए अपने आप स्पिरिचुअल सेल्फ हो जाएगा ना। कोई भी कर्म करते हैं हम, कोई भी विचार आता है हमारे मन में, कोई भी बात हम बोलना चाहते हैं, क्या हम कभी सोचते हैं कि क्या ये मॉरल है, एथिकल है, क्या यही बात मैं सुनने को तैयार हूं, आज मैं कहने को तो तैयार हूं, और शायद मैं बिना सोचे कह भी देता हूं, लेकिन यही बात अगर कोई मुझसे कहता है तो क्या मैं उसको सुन सकता हूं। सो इसीलिए कनेक्ट योरसेल्फ विद मोरलिटी, विद ट्रूथ, जो कुछ मैं कह रहा हूं क्या वो सत्य है या मैंने उसको सत्य बना दिया है, अंतर है इस बात में। कई बार हम देखें बात समझाने के लिए हम पहले से घर में बात करते हैं, आप मत बात करना, मैं बोलूंगा, मैं कहूंगा, अक्सर होता है ना, क्यों ऐसा क्यों होता है, लगता है ना कोई बात वो कह ना दे जिससे गलत चली जाए ना, मैं कहूंगा ना, आपने नहीं बोलना। और खास तौर पर ये ऐसे सेंसिटिव मामलों में तो ऐसा ही होता है, जब कभी कहीं रिश्तों की बात हो रही हो, थैंक गॉड ब्रह्मा कुमारीज में अक्सर नहीं होती ये बातें, तो लेकिन हो रही हो तो वहां क्या होता है, ये नहीं बताना, ये ऐसे नहीं बताना, ये उस ढंग से नहीं दिखा, ये क्या मतलब है, आर वी कनेक्टिंग अवर सेल्फ विद ट्रूथ, आर वी ट्रूथफुल, नहीं मैंने झूठ तो नहीं, राइट आपने झूठ नहीं बोला, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्या आपने सच बोला, झूठ तो नहीं बोला आपने, वेरी राइट, लेकिन सच भी तो नहीं बोला ना, फिर कहां रह गए, त्रिशंकु की तरह से बीच में लटके हुए हैं हम, ना इधर के ना उधर के, मैं ये नहीं कहता कि धोबी का कुत्ता बन गए हम, लेकिन हालत तो कई बार ऐसी हो जाती ना, हम अपने अपने गिल्ट कॉन्शियसनेस को भी दबाते हैं, छुपाते हैं, और हालत इतनी हो जाती है कि अब तो हमें आदत पड़ गई ना, अब तो हमारा अंतर्मन भी शायद उसके ऊपर भी जैसे राख 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 पड़ती जाती है चिंगारी के ऊपर, तो वो चिंगारी भी दब जाती है, तो वैसे ही कहीं ऐसा हाल तो नहीं हो रहा हमारा, ऑफ कोर्स ये तो मैं मान के चलता हूं कि हम जो जितने सिलेक्टेड या एलीट हैं समाज के, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के एलीट जो बैठे हैं हम यहां पर, हमारा तो वो हाल नहीं हो सकता, लेकिन जिनका होता है उसको तो रोके, और कहीं ऐसा तो नहीं कहीं ऐसे हालात के किनारे पर हम खड़े हों और जरा सा डगमगाएं और बीच में खड्डे में जा गिरे हम, आई होप यू अंडरस्टैंड मी, समझ रहे हैं मेरी बात को आप, तो इसीलिए थोड़ा सा हम रहें अलर्ट अपने आप, कोई बात नहीं ना, एक बार काम नहीं होगा ना होने दो ना, दूसरी बार भी नहीं होगा ना हो, बिल्कुल नहीं होगा बिल्कुल ना हो, देन व्हाट, हेवंस आर नॉट गोइंग टू फॉल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके काम नहीं हुए तो क्या वो मर गए क्या, और अगर ऐसे लोग मर भी गए तो लोग याद तो करेंगे ना कि वो इसलिए मरे, बुराई कहां है, हम क्यों डरते हैं सत्य को एक्सेप्ट करने में, और फिर जब आप सत्य के साथ जुड़ते चले जाते हैं तो फिर आप सुप्रीम सोल के साथ भी कनेक्ट हो जाएंगे, एंड वंस यू आर कनेक्टेड विद द सुप्रीम सोल, हाउ डज इट मैटर कि लोग परवाह करते हैं कि नहीं करते, क्या फर्क पड़ता है, ब्रह्मा कुमारी इसको कोई कुछ भी कहे क्या फर्क पड़े, ये जादू करती हैं, लोगों का घर छुड़वा देती हैं, लोगों के परिवार बर्बाद कर देती हैं ना, फिर तुम मत आओ इधर, तुम्हें बुलाया था क्या, यानी मैं हैरान हुआ जब पहली बार मैं अपना हिसार सेंटर पर गया अपने युगल के साथ, और मैंने कहा जी मुझे 7 दिन का कोर्स करवाइए, कहने लगे आपको किसने भेजा, लगता है ना किसी ने प्रेरणा दी होगी, किसी ने इंस्पायर किया होगा, मैंने कहा जी मुझे दादी प्रकाश मणि जी ने भेजा है आपके पास, तो उनको हैरानी हुई, तो मैंने कहा कुछ जरूरी है कि कोई मुझे इंस्पायर करे तब मैं अच्छाई सीखूं, सीख लिया ना किसी, मुझे लगा मेरे अंदर से प्रेरणा हुई कि मुझे अपने बारे में जानना चाहिए ना, अपने आत्मा के बारे में, मैं कौन हूं, क्यों हूं, किस लिए हूं, कब तक हूं, मुझे जानने की इच्छा है ना, अब बताइए फिनिश, मुझे किसने भेजा, किस लिए, लेट इट बी, कोई भेजे उससे क्या फर्क पड़ता है, तो लेट अस कनेक्ट विद द ट्रूथ एंड देन कनेक्ट विद द सुप्रीम सोल। और एक और चीज, अगर हम सच में चाहते हैं कि हम वी शुड बी एबल टू री एस्टेब्लिश द वैल्यूज इन अवर लाइफ, तो अपने जीवन के अंदर एक बैलेंस, एक संतुलन और पॉजिटिविटी लाने का प्रयास करें, पॉजिटिविटी लाएं, एक संतुलन पैदा करें। मैं साधु सन्यासी नहीं हूं, मैं साधु सन्यासियों की तरह जंगल और जंगल की कुटिया में जाके नहीं रह सकता हूं। बिना पाप किए, बिना गलत कर्म किए भी तो मैं इस समाज में रह सकता हूं ना। कहां कहा गया है कि आप अच्छे कपड़े ना पहनो? कहां कहा गया कि आप अच्छे मकानों में ना रहो? किस शास्त्र में लिखा हुआ है कि गाड़ियों का इस्तेमाल ना करो? हां, उनका गलत उद्देश्य के लिए इस्तेमाल ना करो, उनकी प्राप्ति गलत साधनों से ना करो। वो तो हर चीज के लिए है ना, जरूरी कपड़ों और पैसे और मकान और कारों के लिए तो नहीं ना, वो तो हर चीज के लिए है। तो उस नियम को धारण करो ना। सो लेट देयर बी ए बैलेंस, बैलेंस एंड पॉजिटिविटी, सकारात्मक जीवन, सकारात्मकता क्या कहेंगे हिंदी में, हिंदी में पॉजिटिविटी कहेंगे वो। तो देखिए, कई बार हिंदी के ऐसे शब्द बड़े आसान होते हैं, पॉजिटिविटी, यूनिवर्सिटी, बहुत आसान है ना। तो देखिए, लेट अस बी पॉजिटिव। मैं ये नहीं कहता ब्रह्मा कुमारीज मे बी एक्सेप्शन, लेकिन आप अपने समाज के बाहर, घर के चारों तरफ देखिए, घर के अपने मेंबर्स के बारे में भी देखिए, दिन में कितनी बार वो पॉजिटिव बात करते हैं। यूं लगता है जैसे हर वक्त तैयार बैठे हैं, मौका मिले किसी के ऊपर उंगली उठाने का, आलोचना करने का, दोष निकाल तैयार बैठे हैं। जैसे दुश्मन तीर कमान लेके बैठा होता है कि जरा सा कोई नजर आया और तीर छोड़ दिया, तो हम नेगेटिविटी वैसे चला रहे हैं क्या? पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकते? सकारात्मक होने में भाईचारा भी है, प्यार भी है, इज्जत भी है, सहयोग भी है, सद्भावना भी है, सब कुछ तो है। और नेगेटिव होने में क्या मिला? मिला तो कुछ भी नहीं, गया ही गया, जो अच्छा था वो खो दिया, खर्च कर दिया सारा। सो अगर हम, यानी जो आदर्श है और जो मेरा वर्तमान है, उसके बीच में बैलेंस, एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास करूं, और साथ ही साथ अपना एटीट्यूड सकारात्मक रखूं, तो निश्चय ही मैं वैल्यूज की तरफ बढ़ सकता हूं। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और फिर एक चीज और भी ध्यान रखनी चाहिए कि जहां तक हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ हैं, वो फिजिकल लेवल पर पॉसिबल नहीं होती। यानी मैं जितनी वैल्यूज को अडॉप्ट करना चाहूं, वो मेरे मेंटल, इमोशनल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर अटेन होंगी, फिजिकल लेवल पर नहीं होती है। अगर मैं चाहूं कि फिजिकल जीवन जीते हुए, भौतिक जीवन जीते हुए, बायोलॉजिकल जीवन जीते हुए मैं हायर वैल्यूज को अपने जीवन में अडॉप्ट कर सकूं, बिना मेंटल, बिना इमोशनल भावनाओं को बीच में लाए हुए, तो शायद ये नहीं हो पाएगा। इसलिए जरूरी है कि जब भी मैं वैल्यूज की बात करता हूं, वैल्यूज को अडॉप्ट करने का प्रयास करता हूं, वैल्यूज में ऊंचा उठने का प्रयास करता हूं, तो मुझे मेंटल और इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर ही सोचना चाहिए, मटेरियल लेवल पर नहीं। अगर मैंने ये वैल्यू अडॉप्ट कर ली तो मैं सवेरे कॉलेज कैसे जाऊंगा? ये वैल्यू अडॉप्ट कर ली तो फिर मैं ये कपड़े कैसे पहन पाऊंगा? ये वैल्यू अडॉप्ट कर ली तो ये मैं खाना कैसे बना पाऊंगा? तो ये मटेरियल लेवल पर नहीं, ये सुख सुविधाएं तो फिर मुझे छोड़नी पड़ेंगी ना। जब ऐसे प्रश्न मन में आने लगते हैं तो फिर हायर वैल्यूज नहीं आती हैं। हायर वैल्यूज इनसे परे हैं, इनसे ऊपर हैं, और हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। बेशक हम कई बार कहें कि देखने में कई बार बहुत अच्छा लगता है ना, चीज अच्छी है, सुंदर है, बहुत लोग बहुत सुंदर नजर आते हैं, लेकिन क्या हम उन सब के साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं? बात वही आ जाती है ना, सुंदर हुआ तो क्या, व्हाट अबाउट द कैरेक्टर, चरित्र, आचरण, विचार, रहन सहन। फिर हम कई बार कहते हैं ना कि ये सुंदरता केवल शरीर की या चमड़ी की सुंदरता थोड़ी है। क्या हो गया अगर कोई सुंदर है? दूसरे शब्दों में क्या हो गया अगर कोई रिच है? क्या हो गया अगर उसके पास सुख सुविधा के साधन हैं? क्या हो गया अगर उसके पास लग्जरीज हैं? प्रश्न तो ये है, क्या उसके पास चरित्र है, अर्थात गुण हैं, क्वालिटीज हैं, वैल्यूज हैं? सो इसीलिए तभी हम अक्सर कह देते हैं कि नहीं, वैल्यूज बहुत जरूरी हैं। सो डिफाइन करते हुए हम वैल्यूज के लिए कहेंगे कि ये एक तरह के प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर हैं, आइडियल्स ऑफ बिहेवियर हैं। दीज आर द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ बिहेवियर। ये एथिकल पॉलिसीज ऑफ बिहेवियर हैं। या दूसरे संक्षेप में अगर मैं यू कहूं कि दीज आर द सेल्फ इंपोज्ड स्पिरिचुअल रूल्स एंड नॉर्म्स, सेल्फ इंपोज्ड। देखिए, वैल्यूज आपके ऊपर कोई डालता नहीं। बहन जी, आपको सच बोलना होगा। बहन जी कहती है, हाँ बोल रही हूं ना सच। आपको फिर लगता है, नहीं नहीं आप सच बोलिए। वो कहती, मैं सच ही तो बोल रही हूं। आप कहते हैं, नहीं नहीं नहीं। सो यू कैन नॉट फोर्स इट। दीज आर सेल्फ इंपोज्ड। अपने आप पर अगर हम डालेंगे, मैंने अगर अपने आप के ऊपर निश्चय कर लिया, व्रत रखते हैं तो क्या करते हैं आप, आज मैंने कुछ नहीं खाना। घर में माता जी चाहे मेरी मनपसंद सब्जी बनाए, चाहे मनपसंद डिश बनाए, तो भी मैंने नहीं खाना। हां, बेशक गुस्सा कर लूंगा उनके साथ कि आपको पता था आज मेरा व्रत है और आज ही ये बनाना था क्या आपको, तो आज तो ना बनाते कम से कम। अगर मुझे खीर या हलवा पसंद है और आज मैंने व्रत रखा और आपने आज ही खीर बना दी, लेकिन उस सेल्फ, उसके बावजूद भी हम खाते तो नहीं ना, क्योंकि आज मेरा व्रत है। तो वैल्यूज भी उसी तरह से सेल्फ इंपोज्ड रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, जो मैंने अपने आप पर लगाए हैं, लोगों के कहने पर नहीं लगाए हैं। आपकी बुक के अंदर वैल्यूज को क्लासिफाई किया गया है, तीन तरह से क्लासिफाई किया गया है वैल्यूज को। एक यूनिवर्सल वैल्यूज कही गई, ह्यूमन वैल्यूज कही गई, टेम्पोरल वैल्यूज कही गई। यूनिवर्सल वैल्यूज क्या कहेंगे हम, ध्यान से समझें। बुक में बहुत डिटेल में भी मिलेगा, वैल्यूज की चार्ट भी मिल जाएगा, लिस्ट भी मिल जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उसको पढ़ें ना पढ़ें, याद करें ना करें, डोंट वरी अबाउट दैट। द ओनली थिंग इज कि आपको उसके बेसिक्स पता हों। यूनिवर्सल जैसे शब्द बता रहा है ना, यूनिवर्स हिंदी में क्या कहा उसने, सार्वभौमिक, वैश्विक, सार्वभौमिक, हाँ कुछ ऐसे, अब वो तो हिंदी में है ना वर्ल्ड वाइड, वो तो ठीक है। मैं दूसरी इंग्लिश में पूछ रहा था, सार्वभौमिक। चलिए चलिए, देखिए हम तो एक शब्द के ऊपर भी एक मत नहीं हो पाए। बात नहीं नहीं, बात वैल्यूज की हो रही, दिखाने की जरूरत है क्या? हाँ, सर्वमान्य ये भी हो सकता है। चलिए, तो यूनिवर्सल, दैट इज द बेस्ट वर्ड, यूनिवर्सल इज द बेस्ट वर्ड ना। जैसा शब्द बता रहा है ना, यूनिवर्सल, समस्त विश्व के लिए, और समस्त विश्व के लिए नहीं खाली, हमेशा के लिए। यूनिवर्सल तो वो होगा ना, ये नहीं कि आज पूरे संसार के लिए, नहीं, हमेशा से पूरे संसार के लिए। दैट इज द वैल्यूज विच आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स, वो यूनिवर्सल है ना। ऐसे मूल्य जिनको सभी लोगों ने हमेशा माना, उसको कहेंगे ना। यानी मोरालिटी की बात करें, एथिकैलिटी की बात करें, सत्यता की बात करें, तो ये सारी ऐसी बातें ना, किसी भी जगह पर, किसी भी देश में, किसी भी काल में ये तो नहीं कहा गया ना कि सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए, कभी ईमानदार नहीं बनना चाहिए, कभी ऐसा नहीं कहा गया ना। सो यूनिवर्स, पहला जैसे मैंने कहा क्लासिफिकेशन जो है वो ये है यूनिवर्सल वैल्यूज की, जिसको सभी एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हमने कहा जिसमें एथिकल आ गई, मॉरल आ गई, एस्थेटिक। और देखिए कहीं किसी ने ये कहा कि सुंदरता डिटेस्टेबल है, सुंदरता से घृणा की जानी चाहिए। बुरा लगता है ये शब्द ही, बुरा लगता है कि सुंदरता से घृणा करनी चाहिए। लोग तो ये शब्द क्या, ये फ्रेज भी इस्तेमाल करना नहीं ठीक समझते। अगर कोई कहे कि वो घोर सुंदर है, अति सुंदर तो ठीक है, लेकिन कोई देखिए आपको लगा ना अजीब, घोर सुंदर नहीं नहीं, हाँ ये देखिए ना, ये वो बात है ना। सो कहने का भाव क्या है, यानी हमेशा से जिसको जो है एक्सेप्ट किया गया, चाहे वो एस्थेटिक वैल्यू है। एस्थेटिक में एक और भी बोलेंगे अगर हम, तो किसी ने कभी कहा दो और दो पांच होते हैं, चाहे हमेशा से चल रहा हो, सदा काल से जब से सृष्टि है या जब से मानव ने गणित सीखा, गिनती करनी सीखी, तो उसने दो और दो चार ही कहा। कोई ऐसा युग था जब कहा गया हो कि दो और दो तीन होते हैं या दो और दो पांच होते हैं, नहीं कहा गया। ये यूनिवर्सल है, हर देश में, हर काल में, हर क्लाइमेट में इसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो हैं, या यूं कहें जो इंसान की इंट्रिंसिक वैल्यूज हैं, आंतरिक गुण हैं जो इंसान के, अक्सर यही कहते हैं ना, मनुष्य कुछ भी बन जाए, धनी बन जाए, बिजनेसमैन बन जाए, इंटेलिजेंट बन जाए, फिलोसोफर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, लेकिन उस सब के बावजूद भी ये पूछना पड़ता है क्या वो इंसान बन पाया। मतलब कि उसके अंदर जो बेसिक इंट्रिंसिक आंतरिक गुण हैं क्या वो विकसित हो पाए, वो जरूरी है। और ये ऐसी वैल्यूज हैं विच आर ऑलवेज सस्टेन्ड बाय द डिवाइन, यानी सस्टेन्ड बाय द डिवाइन मींस जिनको जो है परमपिता परमात्मा भी स्वीकार करते हैं। हर धर्म के अंदर जो है इनके बारे में कहा जाता है, एक्सेप्टेबिलिटी है, चाहे वो धर्म कोई भी हो। किसी ने कहा प्यार नहीं करना चाहिए, कोई धर्म नहीं कहता, बल्कि सभी धर्म कहते हैं सबसे प्यार करो, मानवता से प्यार करो। और विडंबना यह है कि हम मानव को छोड़कर बाकी सबसे प्यार करते हैं। घर में बिल्लियां पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, कुत्तों को कितने प्यारे प्यारे नाम देते हैं, उनको अपने बिस्तर में अपने साथ सुलाते हैं, बिल्लियों को गोदी में लेकर घूमते हैं। और कई बार मुझे बड़ा तरस आता है, घृणा नहीं होती मुझे, तरस आता है जब आप, या आप आई मीन नॉट यू ऑफ कोर्स, कोई भी एनीबॉडी, जब वो व्यक्ति जो है अपने कुत्ते को या बिल्ली को प्यार से चूमते हैं, करते मेरा दिल करता है मैं उनको कहूं अपने बच्चों को चूमो ना, अपने आसपास के लोगों को प्यार करो, उनको ऐसे गले लगाओ ना जैसे बिल्ली को उठाए उठाए घूमते हो, और ऐसे पुचकारते हो, लाड से बुलाते हो जैसे आपका अपना एक साल का बच्चा हो। देखा मां कैसे बोलती है एक साल के बच्चे के साथ, तुतला कर या उस तरह से, और वो उस उनके साथ ऐसा बोलते हैं जानवरों के साथ। तो आई मीन दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यूज जो हैं वो हमारे अंदर आज नहीं है ना, इसीलिए तो परेशानी हो रही है ना हमें, इसीलिए तो हमें ये कोर्सेस चलाने पड़ रहे हैं ना, मानव को बताना पड़ रहा है तू इंसान है, मानव है भाई, क्यों भूल जाते हो। लेकिन वो कई बार कहते हैं हमने कब कहा है कि मानव, हमने तो कहा ना मैन इज ए सोशल एनिमल, डेफिनेशन दी जाती है अक्सर मैन इज, और किताबों में बड़े बोल्ड ढंग से लिखा होता है, क्लासों में पढ़ाया जाता है, बच्चे रटते हैं, इम्तिहानों में लिखते हैं और पूरे नंबर मिलते हैं। किसी को इस बात लिखने के लिए फेल किया गया कि उसने मानव को एनिमल लिखा, क्योंकि वास्तविकता ये बन गई ना कि हम नीचे गिर गए, नीचे आ गए, वैल्यूज खत्म हो गई ना हमारी। तो यूनिवर्सल वैल्यूज जो हैं वो हमें इस प्रकार से अपनी इंट्रिंसिक वैल्यूज जो सस्टेन्ड बाय गॉड हैं, जिनको स्क्रिप्चर्स में भी लिटरेचर में भी, आप कोई भी लिटरेचर उठा के देखें किसी भी भाषा का, चाहे आप शेक्सपियर को पढ़ें, चाहे इमैनुअल कांट को पढ़ें, चाहे हीगल को पढ़ें या बर्टन रसल को पढ़ें, किसी को भी उठाकर पढ़ें, आप हिंदी के पढ़ें, इंग्लिश के पढ़ें, पंजाबी, उर्दू, तमिल, कोई भी पढ़ें और किसी भी धर्म को पढ़ें, उन वैल्यूज को किसी ने कंडेम नहीं किया कभी, उन वैल्यूज को हमेशा हाईलाइट किया गया है। हमारी जो फिल्में आज इतनी जितनी मार काट, ये वो वॉयलेंस, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या होता है? क्या कभी ये दिखाया गया कि जो ईवल है उसकी विजय हुई? अंत में यही होता है? नहीं, जो अच्छा है वही जीतेगा, चाहे उसका वो जीतना मीनिंगलेस हो जाए अंत में आके। जो है वो कई बार कहते हैं, सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या किया। सो वो सारा कुछ जो है खो बैठे और फिर कहा कि मैंने विलन को मार दिया। तो हमारी पिक्चरें तो अक्सर ऐसी होती है ना, कई बार हैप्पी एंडिंग तो दिखानी होती है ना, लेकिन स्टिल एक बात तो अच्छी है ना इनमें, कि यानी वैल्यूज को अपहोल्ड तो किया ना अंत में सही, चाहे अंत में बताया तो सही कि वैल्यू की ही जीत होती है। सो इसीलिए यानी ये वैल्यूज जो हैं, यूनिवर्सल वैल्यूज की हम बात जो कर रहे थे, यानी ये हमारी सिविलाइजेशन को भी लॉन्जिविटी देती हैं, यानी हमारी सिविलाइजेशन को भी आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं। जैसे जैसे जो है हमारी वैल्यूज ठीक रहेंगी, सभ्यता का विकास होता रहेगा। जहां वैल्यूज का ह्रास होता है वहां सभ्यता भी पिछड़ जाती है। जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं उनके इतिहास को पढ़ के देखें तो आप देखेंगे कि जहां जहां वैल्यूज को अपहोल्ड किया गया वहां वहां वैल्यूज का विकास हुआ, वहां वहां सभ्यता का विकास हुआ। और यही वैल्यूज जो है, यूनिवर्सल वैल्यूज हमारे इनर रिलेशंस को भी स्ट्रेंथन करते हैं। जैसे हमने कहा यूनिवर्सल हैं, दे डोंट चेंज ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ बदलती नहीं है। ये नहीं कि बदल गई वैल्यूज, बदल गई, आज मैं युवा हूं तो यस मुझे ये करना है, आज बूढ़ा हो गया तो नहीं, अब तो मेरे लिए नहीं हो सकता, मेरी वैल्यूज बदल जाए, वो टेम्पोरल वैल्यूज हो जाती है। ह्यूमन वैल्यूज भी बदलती हैं समय के साथ, चाहे लॉन्ग पीरियड के बाद जो है, लेकिन यूनिवर्सल वैल्यूज नहीं बदलती हैं। सो हम बात कर रहे हैं, दूसरे लेवल पर आते हैं हम ह्यूमन वैल्यूज के बारे में ना। ह्यूमन वैल्यूज जो हैं, यानी देखिए आप इनका अंतर समझने का प्रयास करना, मैं ह्यूमन वैल्यूज टेम्पोरल वैल्यूज बताकर भी आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि आपको समझ आ जाए, ये वैल्यूज तो तीन तरह के हैं लेकिन इनमें अंतर क्या है। अब ह्यूमन वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल, ये समाज के एक हार्मोनियस यानी तालमेल से, हार्मोनियस कंटिन्यूटी ऑफ सिविलाइज्ड लिविंग के लिए है, कि हम एक तालमेल के साथ सभ्य जीवन का विकास कर सकें, यह ह्यूमन वैल्यू है। अब देखिए इसी बात को अगर आप दोबारा बैठकर चिंतन करेंगे तो आपको अंतर नजर आ जाएगा यूनिवर्सल और इसमें। मैंने कहा कि सभ्य जीवन के संतुलित और तालमेल के साथ कंटिन्यूटी या विकास को जो है ह्यूमन वैल्यूज। अब जहां विकास नहीं हो रहा है, जिस समाज में कुछ कमी नजर आ रही है, वहां उस बात को किया जाएगा। जरूरी तो नहीं ना कि यही बात मैं दूसरी जगह पे भी करूंगा, वहां जरूरत ही नहीं है ना ऑलरेडी। तो दिस इज फॉर हार्मोनियस कंटिन्यूटी of civilized living, harmonious continuity of civilized living as I said। और दूसरे शब्दों में अगर मैं यूं कहूं कि जो हमारी यूनिवर्सल वैल्यूज है ना, उनका प्रैक्टिकल मटीरियल मैनिफेस्टेशन लाइफ के अंदर वो ह्यूमन वैल्यूज बन जाता है। अब हमने कहा एथिकल वैल्यू, moral value. اور میں دوسرے شبدوں میں کہوں کہ ہمیں کوآپریشن کرنی چاہیے, ہمیں آنےسٹ ہونا چاہیے, ہمیں یونٹی میں رہنا چاہیے. اب یہ ہیومن ویلیوز ہو گئی. یونٹی, ہم ایک گروپ میں رہ رہے ہیں 10-20-15, ہمیں اکٹھا ہونا, سہیوگ سنگٹھن ہونا چاہیے نا. یعنی کہنے کا بھاو یہ ہے کہ جو کریاتمک روپ میں یونیورسل ویلیوز کو ہم ایکسپریس کرتے ہیں. اب جیسے میں یوں کہوں 2 اور 2 4, اب یہ میتھمیٹکس کی ارتھمیٹک کی بات کر رہا ہوں میں, لیکن اگر میں یہ کہوں 2 اور 2 4 کہنا واسطو میں ایستھیٹک ویلیو ہے. اب میں اس کے گہرے ارتھ کی طرف چلا گیا نا, ایبسٹریکٹ میننگ کی طرف چلا گیا نا, تو وہ ایبسٹریکٹ میننگ کی طرف چلا گیا تو وہ یونیورسل ویلیو ہو گئی نا. اور اس کو اپنے جیون کے اندر میں نے مینیفیسٹیشن دی, آنےسٹی کے روپ میں, کوآپریشن کے روپ میں, یونٹی کے روپ میں, سہیوگ کے روپ میں, سنگٹھن کسی بھی طرح کے روپ میں دیا, تو وہ ہیومن ویلیو اس وقت بن گئی نا, میرے اس گروپ کی ویلیو بن گئی نا. تو اس کو جو ہے وہ ہیومن ویلیو کہیں گے, یہ ان کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے. اور دوسرے ایک اور طرح سے بھی کہیں ہم, جو ہیومن ویلیو ہے وہ ہماری انٹرنل نوبلٹی کو باہر ایکسپریشن میں لاتی ہے. میرے چرتر کے اندر جو اچھائی ہے, گن ہے, نوبلٹی ہے, اس کو میں اپنے کریاتمک روپ میں, دیکھیے ہم کہتے ہیں منشیہ بیسیکلی ایک اچھا انسان ہے, اچھی آتما ہے, لیکن وہ اچھائی نظر کہاں سے آئے گی؟ کریکٹر میں نظر آئے گی نا, کچھ کروں گا تبھی نظر آئے گی نا. تو وہ اس کی مینیفیسٹیشن جو ہے نا, میرے اندر کے جو گن میرے اندر ہیں, بیٹھے ہیں, ان کو جو میں مینیفیسٹ کرتا ہوں اپنے چرتر کے اندر, تو وہ ہیومن ویلیو بن جاتی ہے میری جو ہے. سو اسی لیے سو اٹ ہائی لائٹس دا نوبلٹی ان می. اور جیسے میں نے پہلے بار بار کہہ رہا ہوں میں کہ یونیورسل ویلیو کی کریاتمک مینیفیسٹیشن ایکسپریشن ہیومن ویلیو بنتی ہے. تو اس کا ارتھ یہ بھی ہوا کہ ہیومن ویلیوز جو ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم, لانگ پیریڈ آف ٹائم, یہ تھوڑی بدلتی بھی ہیں سچویشن کے آدھار پر. فریکوینٹ چینج نہیں, کوآپریشن یونٹی یہ وہ فریکوینٹلی نہیں, لیکن بہت سمے کے بعد جیسے ستھتی پریورتت ہوتی ہے, حالات بدل جاتے ہیں, لوگ بدل جاتے ہیں, جنریشنز بدل جاتی ہیں. جیسے آج دیکھیے نا, آپ کہیں گے نا ہمارے بزرگ تو ایسے کہا کرتے, ایسے کیا کرتے تھے, گاؤں میں کوئی آ جائے تو وہ سارے گاؤں کا مہمان ہوتا تھا. آج ہے, لیکن کوئی بات بری تھی کیا؟ نہیں, بات تو اچھی تھی. یعنی ایک کسی کے ساتھ مانوتا کا ویوہار کرنا, کسی کا آدر کرنا, کسی کے ساتھ سدبھاو رکھنا اچھا گن تھا اور وہ کیا جاتا تھا, پریکٹیکلی تھا وہ. آج نہیں ہے, بدل گیا, حالات کے مطابق بدل گیا, کیونکہ جیون ساماجک جیون میں پریورتن آ گیا نا, اسی لیے وہ ویلیو بدل گئی. اس کا یہ ارتھ نہیں کہ وہ ویلیو غلط تھی, وہ ویلیو تھی, لیکن ہیومن ویلیوز ود دا چینج آف ٹائم اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم وہ چینج ہو جاتی ہیں, پریورتت ہو جاتی ہیں. سو یہ ہیومن ویلیوز ہیں. اب اگر ہم آئے ٹیمپورل ویلیوز کے بارے میں, ٹیمپورل کے لیے آپ مجھے ہندی کا شبد بتائیں گے, آپ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ الپکالک, یہی ہے کیا؟ یہ تو بہت سمپل تھا, مجھے آتا تھا. میں سوچا آپ مجھے کوئی نیا شبد بتائیں گے. الپکالک تو مجھے آتا تھا, کیونکہ بابا بہت بار کہتا ہے نا الپکالک, تو بابا بہت بار یوز کرتا ہے. سو میں سوچا کہ ٹیمپورل کچھ اور ہوتا ہے. چلیے کھنک کہہ سکتے ہیں, کھنک بہت الپکالک ہو جائے گا. سو چلیے, सो टेम्पोरल जैसे क्षणिक या अल्पकालिक हो गया, जैसे शब्द बता रहा है, तो ये इनमें बड़ी रैपिड चेंज होती है, परिवर्तित होती है। आप यहां बैठे हैं, आपकी वैल्यूज कुछ और हैं। अरे शांतिवन में हूं, ब्रह्मा कुमारीज में हूं, मैं तो ये कपड़े पहन ही नहीं सकता, कैसे पहन लिए, कलर्ड नहीं पहनने चाहिए थे। हाँ, यहां धूम्रपान, अरे नहीं घर जाके पिएंगे, यहां नहीं, यहां तो ये खा भी नहीं सकते, यहां ऊंचा भी नहीं बोल सकते हैं। हाँ, सो देखिए क्या मतलब हुआ, रैपिड चेंज, स्थिति के मुताबिक, जगह के मुताबिक, व्यक्ति के मुताबिक बदल रही है ना, वो टेम्पोरल वैल्यूज हैं, बदलती जा रही हैं। सो इसीलिए, और जैसे क्योंकि मैंने ये कहा तो दे वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। अब जो ब्रह्मा कुमारीज में ठीक है, जरूरी तो नहीं वो बाहर भी ठीक होगा, जो भारत में ठीक है वो इंग्लैंड में ठीक होगा, जो इंग्लैंड में ठीक है वो अमेरिका में ठीक, जरूरी तो नहीं ना, वो उनकी अपनी वैल्यूज हैं। आप तभी तो हम कहते हैं ना, उनका अपना स्टाइल है, हम इसको स्टाइल शब्द कह के छोड़ देते हैं ना, उनकी जीवन शैली अपने ढंग की है ना, वो अपने ढंग से जीते हैं। वो क्या है अपना ढंग, टेम्पोरल वैल्यूज ही तो है ना। यानी वहां देखिए वेस्ट के अंदर ये बड़ा अजीब सा माना जाता है कि आप प्योर वेजिटेरियन हैं, बड़ा मुश्किल सा लगता है। दो एक बार मुझे मौका मिला तो भाई साहब जरा ये आप पिक्चर दिखानी बंद करेंगे ना, नहीं तो इन सब का ध्यान तो उधर जाएगा, मुझे कौन देखेगा। अब आई कांट बी मोर ब्यूटीफुल और चार्मिंग देन दीज पिक्चर्स है ना, आई कैन नॉट बी, सो व्हाई शुड दे लुक एट मी, सॉरी गुप्ता जी। सो आप 5 मिनट बाद में एक्स्ट्रा लगा लेना, कोई बात नहीं। तो देखिए, यानी कहने का भाव ये कि कई बार कई जगह पे तो ऐसा सोचा ही नहीं जा सकता, वेजिटेरियन प्योर वेज, नो नॉट पॉसिबल, बड़ा अजीब लगता। मैं एक बार नाइजीरिया गया तो प्लेन के अंदर बड़ा मुश्किल, एक तो हम ब्रह्मा कुमारी वाले और फिर प्योर वेजिटेरियन, तो उनके लिए मुश्किल हो गया। फिर हमारे लिए एक ही बचा था कि हमें आप फ्रूट सैलेड ही दे दें, वही काफी है हमारे लिए। दुबई एयरपोर्ट पे या दुबई शहर के अंदर फिर मुश्किल, कुछ भी आप खाने के लिए ढूंढे देखें नहीं मिलेगा ना आपको कुछ भी। अब क्या हुआ, आपको 7 घंटे इंतजार करनी है एयरपोर्ट पे, तो बैठे रहो, या अपना लेके आते, आप इंडिया से लेके आते, नहीं ले आए तो आपकी कमी है ना, उनकी गलती थोड़ी है। सो यानी दीज आर द वैल्यूज दे हैव। कहीं भी आप हर एक इस समाज में आ गए, कोई कहे आपसे कि मेरे कमरे पे कोई आ जाए कि भाई साहब जरा ऐश ट्रे देना, माचिस देना, लाइटर देना, तो मेरा क्या रिएक्शन होगा, बहुत बुरा, उसको बुरा लगेगा कि ये डिस्कर्टियस है, मुझे बुरा लगेगा कि इसको समझ ही नहीं है कि ब्रह्मा कुमारी इसके एरिया में बैठा है ये। तो टेम्पोरल वैल्यूज जो है दे वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, ग्रुप टू ग्रुप, इवन फैमिली टू फैमिली। जब हम अक्सर कहते हैं हमारे घर में तो ये बुरा माना जाता है, हमारे घर में, आपके घर में अच्छा होगा, हमारे घर में बुरा, यानी हमारी घर की वैल्यू और है, आपके घर की वैल्यू कुछ और होगी। हम तो पापा के सामने कभी नहीं बोल सकते, हम तो पापा के आगे नजर भी नहीं उठा के देखते, बात करते, तो ये भी तो एक वैल्यू है ना अपने, और दूसरे के लिए शायद ये बुराई हो। आपके लिए वैल्यू है कि मैंने अपने बड़ों के आगे कभी भी सर उठाकर या आंख उठाकर बात नहीं की है, और दूसरे कहते हैं आपके घर में डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, फिर डिक्टेटरशिप चलती है क्या, अथॉरिटेरियन रूल है घर में, पापा ने जो कह दिया वो सबने मानना है, तो अलग अलग बात है ना। सो ये टेम्पोरल वैल्यूज हैं, और ये टेम्पोरल वैल्यूज आमतौर पर रूलिंग पावर पर डिपेंड करती हैं, डिपेंड ये करता है रूलिंग पावर कौन है, घर की, समाज की, देश की, सोसाइटी, जो भी रूलिंग पावर है। यहां बाबा रूलिंग पावर है, तो बाबा ने जो कहा वो चलेगा, दादी ने जो कहा वो चलेगा, और बाहर वाले हों तो वो कह सकते हैं हम नहीं मानते आपके बाबा को दादी को, हमें क्या लेना है, बाहर वाले ये भी कह देंगे। तो ये रूलिंग पावर जो है, यहां का लॉ जो है, वही वही इस टेम्पोरल वैल्यू को डिटर्मिन करेगा ना, वही बताएगा ना। और बहुत बार जो है ऐसी वैल्यूज जो टेम्पोरल वैल्यूज होती है ना, ये जरूरी भी होती है मटेरियल नीड्स के मुताबिक जो है, जिंदगी के जो एस्पिरेशंस एम्बिशंस हैं उनके बेस पर भी डिपेंड करती है ना। मुझे दिस ऑल्सो इज एन इंडिकेटर दैट आई शुड वाइंड इट अप, मुझे खत्म करना चाहिए, 5-7 मिनट और सिर्फ। सो दैट इज, ये जैसे हमने कहा टेम्पोरल वैल्यूज जो हमारी मटेरियल नीड्स के साथ एस्पिरेशन एम्बिशंस के साथ भी जुड़ी हुई हैं, हमारे कस्टम्स के साथ भी ये जुड़ जाती हैं। हिंदू लोगों का कस्टम ये है, मुस्लिम्स का कस्टम ये है, हिंदू लोग तो ये नहीं करते हैं। बहुत लोगों को देखा है मैंने कि इस दिन हमने घर में साबुन का इस्तेमाल नहीं करना, इस दिन हमने तेल नहीं लगाना सर पर, यानी अलग अलग तरह के हमने ये बना वैल्यूज बना रखी है ना, ये कि ये नहीं करना होता। बृहस्पतिवार को बहने कपड़े नहीं धोती हिंदू परिवारों के अंदर, और कई बार शनिवार या मंगलवार कहते हैं कि नाखून नहीं काटने चाहिए, ये नहीं होना। तो आई मीन दीज आर दे रिलेट टू कस्टम्स ऑल्सो ना, हमारे ये रीति रिवाज जो बन गए हैं। आप शादी ब्याह में देखिए ना, बहुत कुछ होता है और आप किसी भी बात पर प्रश्न उठा लें, क्यों, जवाब है कि ऐसा होता है, तुम्हें क्या पता ऐसा होता है, तो चल गया ना, ऐसा चलता है ना, होता है ये, होता है। सो ये चीजें जो हैं, यानी, और फिर दूसरी बात, ये एज के साथ भी परिवर्तित होती हैं। एज ये नहीं कि युग के साथ, मनुष्य की अपनी एज के साथ भी। देखिए आप जब युवा हैं, आप तो हैं थे, तो मैं अपने लिए कहूं ना, सो जब शायद मैं सच बोल रहा था, सो देखिए जब युवा होते हैं तो उस वक्त कुछ और आइडियल्स होते हैं, भाग दौड़ ये वो सब कुछ कर लेंगे, और जब जो है उम्र ढल गई या जो है फिजिकल एनर्जी नहीं रही, या दूसरे शब्दों में जिसको बुढ़ापा कह दिया जाता है, मैं तैयार नहीं हूं मानने के लिए, लेकिन स्टिल जिसको बुढ़ापा कहते हैं उसकी वैल्यूज कुछ और होती हैं। तभी हम कहते हैं ना, कई बार बूढ़े लोग ऐसा थोड़ी करते हैं, और किसी से आप ये कहें ना कि भाई अध्यात्म, तो अक्सर मेरे को कई कहते हैं जी जब आपकी उम्र में पहुंचेंगे ना, पढ़ेंगे ना अध्यात्म पढ़ लेंगे ना, तो अभी हमारी उम्र थोड़ी है, यानी अभी हमारी उम्र नहीं है, मतलब उम्र की वैल्यू बुढ़ापे में अध्यात्म की वैल्यू है, वरना नहीं है। यानी धर्म कर्म का काम बुढ़ापे में करेंगे ना, बहुत समय होगा तब करेंगे। सो अक्सर ये कहा जाता है। इसके बाद आपकी बुक में एस्पाउज्ड एंड अप्लाइड वैल्यूज। अब देखिए एक सिंपल सी बात आप समझ लें, इसका अर्थ क्या है एस्पाउज्ड एंड अप्लाइड। आप आदर्श किसको मानते हैं, गुण किसका गाते हैं, और जीवन में अडॉप्ट किसको करते हैं, ये अंतर है। एस्पाउज्ड जिसको आपने आदर्श माना, कहते तो आप कुछ हैं, अप्लाइड जो आप वास्तव में जीवन में धारण करते हैं। कथनी और करनी में अंतर होता है ना, एस्पाउज्ड जो कथनी है, आदर्श है, आदर्श है, हिंदी में यही होता है बहन जी, इसको हिंदी में एस्पाउज्ड लिखो कितना अच्छा लगेगा। हाँ देखिए, ओह यस दैट्स राइट, थैंक यू सिस्टर, धन्यवाद। सैद्धांतिक और व्यवहारिक, ये शब्द अच्छा लगा, बिल्कुल ठीक है। सैद्धांतिक यानी सिद्धांत के तौर पर तो सदा सच बोलना चाहिए, व्यवहार में कितना सच बोलते हैं, ये एस्पाउज्ड और अप्लाइड की बात हो गई। अप्लाइड यानी साइकोलॉजी आप पढ़ते हैं, और एक सब्जेक्ट है अप्लाइड साइकोलॉजी, बहुतों ने पढ़ी होगी। तो अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी के नियम को वास्तविक जीवन के अंदर अप्लाई करना, वो अप्लाइड साइकोलॉजी है। So, उसी तरह से जो है ये वैल्यूज भी हैं कि इनके बारे में बात करना बहुत इजी होता है, कहना तो बहुत आसान है, सदा सच बोलो, ईमानदार रहो, और जब कोई ना देख रहा हो तब भी ईमानदार रहो, तो कहां रहा जाता है ना, हो जाता है ना, और फिर कई बार क्या कहते हैं, कोई देख भी ले तो कभी कभी करना पड़ता है ना, कभी हो जाता है ना, मजबूरी है ना। हाँ, स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है ना कहीं, वो तो बोलने तक है, काम करते वक्त भी नहीं मैंने कर लिया, किसी का नुकसान थोड़ी किया है ना। सो ये एस्पाउस्ड और अप्लाइड वैल्यूज का है, और वैल्यू जजमेंट में हमारे अक्सर डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, अक्सर डबल स्टैंडर्ड्स हम कर लेते हैं अपनी फॉल्स ईगो। जब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं भूल जाते हैं कि वो अवगुण मेरे अंदर हैं, और जब बच्चा पॉइंट आउट करता है तो फिर मुश्किल हो जाती है, ये डबल स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं हमारे जो हैं। यानी वैल्यू जजमेंट जब होने लगती है, हम अक्सर करते हैं जज, भाई साहब आपने गलत कर दिया, मतलब इशारा किया, वैसे नहीं आपने कुछ नहीं किया, सो बहन जी आपने गलत कहा, आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपको ये नहीं कहना चाहिए था, और मैं भूल जाता हूं कि ये सारा कुछ मैं ही करता हूं कहता हूं, क्योंकि जब मैं एक उंगली उठाता हूं तो ये तीन मेरी अपनी तरफ उठी हुई हैं, वो मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि नीचे है ना, तो मेरा तो हाथ तो ये है ना, उंगली एक नजर आती है। सो ये जो है ना, हम अक्सर वैल्यू जजमेंट में डबल स्टैंडर्ड्स, फॉल्स ईगोज इसको लेकर बैठते हैं। बहुत बार जो है हमारे वैल्यू जजमेंट जो है ट्रेडिशन पर बेस्ड होती है, घरों में अक्सर का वो आदमी है ना, वो बेटा है ना, बेटा है ना, तो क्या हुआ बेटा है तो, नहीं नहीं बेटियां ऐसे नहीं करती ना, मेल डोमिनेंस, पुरुष प्रधान समाज, तो चाहे हम पुरुष लोग बैठे हैं इधर हमें लगता है, लेकिन मुझे नफरत होती है इस शब्द से ना, पुरुष प्रधान समाज, हम इक्वल क्यों नहीं हो सकते, वाई कांट वी बी डेमोक्रेटिक, मेरे को क्या नुकसान हो जाएगा अगर मैं ये कहूं कि मेरी पत्नी ने ठीक कहा है, क्या बिगड़ जाएगा अगर मैं ये कहूं मैं गलत हूं वो ठीक है, फिर क्या हो गया, देन व्हाट। लेकिन नहीं, हमारी तो ईगो, और मेरे को तो दूसरे लोग भी कहेंगे, अरे फिर वो जो अक्सर आमतौर पर शब्द फ्रेज इस्तेमाल किए जाते हैं ना, जोरू का गुलाम और ये वो, ऐसे शब्द, वो शब्द इस्तेमाल होने लगे, और इन शब्दों से हम बहुत डरते हैं। यानी शायद हम उससे ना डरें, बीवी से भी ना डरें, या उससे ना हो, अपने आप को नीचा कहने से भी हर्ज ना हो, लेकिन जब लोग कहने लगते हैं ना तो उस वक्त परेशानी होती है। तो वैल्यू जजमेंट्स जो है ट्रेडिशन के बेस पर भी, स्त्रियों को ये नहीं करना चाहिए, पुरुषों को ये शोभा नहीं देता, घर के बर्तन मांजना, कपड़े धोना, ये शोभा नहीं देता, क्यों, ये स्त्रियों को शोभा देता है क्या, स्त्रियां बनी इसलिए हैं क्या, लेकिन नहीं, हमने बना रखा है ना। सो ये वैल्यूज ऐसी जो हमने बना, बहुत सारी वैल्यूज विमेन मैरिज पर हैं, बहुत पेट्रियार्की पर हैं, बहुत कुछ ऐसी हैं। तो वैल्यूज के आगे जो हमें चैलेंजेस, क्योंकि आप समझ गए अब इतना कुछ कि वैल्यूज में कितनी ऐसी बातें हैं, जो हम वैल्यू बात तो करते हैं लेकिन हम कितना उनको धारण कर पाते हैं। सो लास्टली मैं कहूंगा कि वैल्यूज के लिए चैलेंजेस भी बहुत आते हैं जो फेस करने पड़ते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं चैलेंजेस, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल यानी मेरे अपने कैरेक्टर के कुछ डिफेक्ट्स हैं, मेरी अपनी डिजायर्स हैं, मेरी अपनी प्रवृत्ति है, मेरे को गुस्सा आ जाता है, तो ये चीजें मेरे को वैल्यूज को डेवलप होने में दिक्कत करती हैं। कई एक्सटर्नल चैलेंज, ये तो इंटरनल थे मेरे कैरेक्टर के डिफेक्ट्स वगैरह जो हैं, डिजायर्स वगैरह, कई एक्सटर्नल हैं, जैसे कई सोशल हैं, समाज में तो ये करना ही पड़ेगा, और इस समाज में रहना तो करना ही पड़ेगा। प्रोफेशनल हैं, भाई अगर आपको ये चीज नहीं ठीक लगती नौकरी छोड़ दो चले जाओ, अब प्राइवेट सर्विस का जमाना हो गया तो अब कई बार देखिए हम क्या कहते हैं, वो प्राइवेट सर्विस वाले तो बड़ा एक्सप्लॉइट करते हैं, तो आप छोड़ दो ना एक्सप्लॉयटेशन को, ना एक्सप्लॉयट हो वो क्या कहते हैं, नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो वो एक्सटर्नल चैलेंज है ना, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा या उसके साथ रहना पड़ेगा। लाइफ की बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, प्रेडिकमेंट्स, डायलेमास, कि ये करूं ना करूं, यानी कई बार कहते हैं ना कि ये करूं तो भी गलत, वो करूं तो भी गलत, आगे कुआं पीछे खाई, कहते हैं ना कई बार, आगे चलूं तो भी मुश्किल, पीछे हटूं तो भी मुश्किल। सो ये चैलेंजेस तो हमें सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली बात वही आती है कि जब हम इन चैलेंजेस का सामना कर पाएंगे, बेशक टेम्परेरली हमें अपोजिशन का भी सामना करना पड़े, शायद कई बार बेइज्जती का भी सामना करना पड़े, शायद कई बार मटेरियल लॉस भी हो जाए, लेकिन अगर हम अपने वैल्यू सिस्टम पर टिके रहेंगे तो अल्टीमेटली वी गेट दैट एस्टीम, अंत में आदर हमें मिलेगा। वो कहते हैं ना कि अंत में विजय सत्य की, जैसे कहते हैं ना सत्यमेव जयते, कुछ भी हो जाए अंत में विजय तो वैल्यूज की ही होगी। सो ये वो दौड़ है जिसमें खरगोश सोने वाला नहीं जीत सकता, कछुआ ही जीतेगा, क्योंकि वो लगातार चलता है। खरगोश की तरह से दौड़ा बैठ गया, दौड़ा बैठ गया, सो गया, वो आज के जमाने में हो सकता है, लेकिन कछुआ लगातार चलता है और जीतता है और स्ट्रांग रहता है। उसको कोई जो है बाहरी पावर उसको तंग नहीं कर सकती, जैसे कछुए को पता नहीं क्या क्या डरा भी सकता है। ओम शांति। आई एम सॉरी मैंने 5-10 मिनट फालतू लिए। मोल्ड करके गोल्ड बना लो ना, देखिए बात ये है कि आप, बाबा का कहने का अर्थ ये है कि आपने अपनी बात कही, वैल्यू बेस्ड बात कही, अगला सुनने को तैयार ही नहीं है, आर्ग्यू कर रहा है। आप जानते हैं कि आपकी बात सत्य है, हमेशा से सत्य है, केवल आप अकेले नहीं है जो उसको सत्य कह रहे हैं, लेकिन वो उसको मानने को तैयार नहीं है। मतलब आर्ग्यूमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो बाबा कहता है पीछे हटो ना, क्या जरूरत है उसको मनाने की। बाबा ये भी तो कहता है ना कि उसके भाग्य में है ही नहीं, आपने उसको सतयुग में जरूर ले जाना है, फिर अगले कल्प में सतयुग ही गंदा हो जाए तो ठीक है। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद गुलियानी भाई का, बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ाया भी, हंसाया भी, सिखाया भी। एक बार फिर हम जोरदार तालियों से भाई साहब का धन्यवाद करता हूँ।